ओम शांति। हम सब के बीच में उपस्थित हैं आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी आशा दीदी जी, जो निदेशक हैं ओम शांति रिट्रीट सेंटर, जो उत्तरी भारत का सबसे विशाल बाबा का केंद्र है। ऐसी ब्राह्मण कुल की कोहिनूर हीरे को हम सभी ब्रह्मावत्स अपने बीच पाकर जोरदार कर्तन ध्वनि से उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। आदरणीय दीदी जी, विश्व नाथ बाबा की विश्व मंच पर प्रकाशवान बाबा का वो हीरा है जो बाबा के प्रकाश को बाल्यकाल से ही भारत भूमि से विश्व धरा पर फैला रही हैं। आदरणीय दीदी, छोटी आयु से ही ईश्वरीय परिवार से जुड़ी, मात्र 9 वर्ष की आयु, और आपने 1972 में विश्व कल्याण के लिए, मानव उत्थान के लिए अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित किया। आपने गोल्ड मेडल हायर एजुकेशन को प्राप्त किया और आपने एस प्रोफेसर की सेवाएं भी प्रदान की। आदरणीय दीदी प्रेरक वक्ता हैं और कुशल प्रशासक हैं। आपने पूरे भारत में ही भ्रमण नहीं किया, बल्कि विश्व में अनेक यात्राएं आपने आध्यात्मिकता का संदेश और मानव मन को शांति देने के लिए किया है। आप एक आध्यात्मिक ऊर्जावान यशस्वी नेता हैं जो विश्व के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, अंतरधार्मिक संवादों को प्रेरित करती रही हैं। आप रेडियो टीवी कार्यक्रमों में निरंतर आपके व्याख्यान आते रहे हैं। संस्कार चैनल और पीस ऑफ माइंड चैनल हमारे मुख्य रूप से आपकी निरंतर धारा प्रवाहित उद्बोधन को सुनते रहते हैं। आप भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की योग विशेष समिति में ब्रह्मा कुमारीज का प्रतिनिधित्व भी करती हैं। भारत वर्ष सहित विश्व भर के VVIPs की सेवाओं में आप अग्रगणी हैं। आप गहन चिंतक हैं, धारणामूर्त हैं, अनेक पत्रिकाओं पुस्तकों की लेखिका भी हैं। ऐसी महान विभूति जो भविष्य राजधानी दिल्ली जोन की अलौकिक सेवाओं को दिव्यता और अलौकिकता से भरपूर कर संचालन कर रही हैं। आप राजयोगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के प्रशासक प्रभाग, आईटी प्रभाग और स्पार्क विंग के चेयरपर्सन हैं। ऐसी महान विभूति, यज्ञ रक्षिका, उदाहरण मूरत, प्रेरणादायी आदरणीय दीदी को हम सब अपने बीच में पाकर गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। आदरणीय दीदी, आज हमें पुरुषार्थ में हाई जंप की विधि वैराग्य वृत्ति के साथ कैसे करें उस पर मार्गदर्शन देंगी। दीदी जी लगन, निष्ठा और समर्पण की मिसाल हैं। दीदी जी, आप लगन, निष्ठा और समर्पण की मिसाल हैं। हर मुश्किल का आप तोड़ हैं, हर मुश्किल का आप तोड़ हैं। पद प्रतिष्ठा सम्मान से आप भरपूर हैं। नेतृत्व क्षमता आप में बेजोड़ है, नेतृत्व क्षमता आप में बेजोड़ है। धर्म, धैर्य और सादगी की मूर्त हैं आप। धर्म, धैर्य और सादगी की मूरत हैं ऐसी आदरणीय विश्व वंदनीय आशा दीदी जी से हमारा विनम्र निवेदन है कि हमें पुरुषार्थ में हाई जंप कैसे लगाएं, किस विधि से लगाएं और वैराग्य वृत्ति भी कायम रहे। आदरणीय दीदी जी,
ओम शांति, ओम शांति। कविता बहन जो बोल रहे थे, ये वैराग्य है या राग है? क्या कहेंगे, ये वैराग्य की भाषा थी या राग की भाषा थी?
वैराग्य से
भाषा कौन सी थी? बाबा ने हम बच्चों को शुद्ध प्रवृत्ति मार्ग सिखाया है। हमें लक्ष्य दिया, आपको देवी देवता बनना है। श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना है। आप आत्मा हो, शरीर के राजा हो, यह आपकी प्रवृत्ति है। तो शुद्ध प्रवृत्ति मार्ग ये बाबा ने हम बच्चों को पढ़ाया और सिखाया। हर चीज का बैलेंस। तो प्रश्न उठता है, फिर वैराग्य वृत्ति के बारे में क्लास क्यों? वैराग्य वृत्ति का क्या प्रयोजन? शुद्ध प्रवृत्ति है तो फिर वैराग्य वृत्ति क्यों? वैराग्य वृत्ति द्वापर से शुरू होती है। सत्युग त्रेता में तो वैराग्य वृत्ति नहीं है। और बाबा ने संगम पर भी शुद्ध प्रवृत्ति सिखाई, तो वैराग्य वृत्ति क्यों, क्या कारण है? आप बोलो बोलो बोलो, टीचर्स भी बैठी हैं, बोलो। फिर वैराग्य वृत्ति क्यों, जब हमको करना भी शुद्ध प्रवृत्ति है, जाना भी शुद्ध प्रवृत्ति में है, तो वैराग्य क्यों? बोलो। एक के साथ कनेक्ट करने के लिए वैराग्य वृत्ति क्यों? कितनी चीजों से वैराग्य दिलाता है? और कहता है बाबा कि तुम्हारा वैराग औरों में वैराग लाएगा, तुम्हारा वैराग समय को समीप लाएगा, तुम्हारा वैराग विनाश के नगाड़े बजाएगा। क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैं सोच के नहीं आई थी, मैं बैठे बैठे आया, बैठे बैठे आया। ऐसा क्यों, इसका आंसर हम लेंगे। परंतु बाबा ने जो बात कही है, बेहद का वैराग, देखिए किसी भी ऊंचे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तप करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। त्याग करना पड़ता है। आज जितनी भी महान आत्माएं हुई हैं अपने देश में, महात्मा गांधी जी से ले लीजिए, महात्मा गांधी के जीवन में सब उपलब्धियां थी, बड़े अच्छे एडवोकेट थे, परिवार भी अच्छा था, परंतु उनके मन में भी वैराग्य आया। तब उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम जीता। ब्रह्मा बाबा का मिसाल देखिए, ब्रह्मा बाबा को कोई कमी तो नहीं थी, बहुत अच्छा परिवार था, बहुत अच्छा बिजनेस था, समाज में बड़ा मान सम्मान था। ब्रह्मा बाबा को भी वैराग्य आया और बाबा ने अपनी पुरुषार्थ की राहें ऊंची चुनी। आप आज की कलयुग की दुनिया में देख लीजिए, आज हमारे देश के जो नेता हैं, उन्होंने त्याग किया है, त्याग किया। नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए, प्राइम मिनिस्टर, वैराग्य है, त्याग है। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को देख लीजिए, साइंटिस्ट थे परंतु वैरागी थे, त्यागी थे। किसी भी ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको त्याग करना पड़ता है। हर एक अपना देख लीजिए, आप एक श्रेष्ठ ब्राह्मण बनना चाहते हैं, आप श्रेष्ठ क्वालिटी के ब्राह्मण हैं, उसके लिए आपने त्याग किया है। तो त्याग और वैराग ये वह भूमि है जिससे ऊंची प्रारब्ध की उपज होती है। दोनों चीजें ये साथ नहीं चल सकती। सच्चाई की बात यह है, जब हम ब्राह्मण बनते हैं, बाबा को पहचानते हैं, बाबा को जानते हैं, अपना संबंध जोड़ते हैं, रियलाइज होता है मैं ये थी, अब मुझे पुनः ये बनना है, हमारी शुरुआत ब्राह्मण जीवन की वैराग्य से होती है। और इस पुरुषार्थ का समापन भी वैराग्य से होता है। पहले हद का वैराग्य होता है, बढ़ते बढ़ते अंत तक पहुंचते पहुंचते बेहद का वैराग्य होता है। बेहद के वैराग्य से हमारा आरंभ नहीं हो पाता, क्योंकि ज्ञान युक्त बुद्धि नहीं होती है, अनुभवों की कमी होती है, तो स्वीकार करना कठिन होता है। तो हद के वैराग से शुरू करते हैं, बढ़ते बढ़ते बेहद में परिणत होता है। बाबा की कई मुरलियों का मैंने अध्ययन किया। बाबा ने जो बातें बताई हैं, बेहद का वैराग किसे कहें। मुझे याद आता है जब हम छोटे थे, बचपन से चले ज्ञान में, 8-9 वर्ष की आयु थी उस समय, हमें पाठ पढ़ाया जाता था क्या करना है ये कर, दुनिया विनाश के कगार पर है, मूसलों के ढेर पर है, क्या करना है। बच्चे के रूप से वैराग्य समझ में नहीं आता था, लेकिन ज्यों ज्यों बुद्धि ज्ञान युक्त बनती है तो बातें समझ में आना आरंभ होती है। हम सब ब्राह्मण बैठे हैं, हम सब ब्राह्मण नंबर वार है, समान नहीं, सब नंबर वार है। और नंबर वार क्यों है, क्योंकि हमारी ज्ञान की बुद्धि जितनी मैच्योर हुई है, जितनी अनुभवी बनी है, उतना हम ग्रहण करते हैं, उतनी धारणा करते हैं। बहुत कम ब्राह्मण है, बहुत कम, जो एक ही क्लास से परिवर्तित हो जाते हैं, पहले दिन से परिवर्तित हो जाते हैं, फुल नियमों पर चलते हैं। बहुत कम ब्राह्मण है कोई यहां पर, पहली क्लास से, पहले दिन सिर्फ इतना बताइए आपका लक्ष्य है और आपने सब नियमों का पालन करना शुरू कर दिया पहली पहली क्लास। बहुत थोड़े, मेजॉरिटी, जब हमें ये निश्चय होता है, निश्चय के आधार से आपका वैराग्य, याद रखिएगा, जितना निश्चय, जैसा निश्चय, उस आधार से वैराग है। वैराग्य का पथ साधना का है, और अगर साधना कंप्लीट नहीं है साथ साथ, वैराग सिर्फ मन की डिटैचमेंट है, याद रखिएगा, वैराग्य केवल मात्र मन की डिटैचमेंट है, लेकिन ये डिटैचमेंट मेरी बनी रहे उसके लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए, साधना चाहिए। अटेंशन चाहिए, हम छोटे थे, बुद्धि छोटी थी, कभी कोई चीज पर आकर्षण भी हो गया, ये सूटकेस बहुत अच्छा है, मैं भी अपनी मां से मंगा सकती हूं, संकल्प आया, फिर मन में धिक्कार हुआ, अरे तुमने सबको त्याग दिया, धन दौलत प्रशंसा महिमा सत्कार, तुमने सबको त्याग दिया, तुम्हारी बुद्धि सूटकेस में क्यों गई। क्या नहीं तुम्हें उपलब्ध था, बहुत मान शान उपलब्ध था, ये बुद्धि सूटकेस में क्यों गई? धिक्कार हुआ, और इसलिए हुआ क्योंकि एक चीज बचाव के साथ में थी, वो थी पढ़ाई। जितना आप ज्ञान योग की पढ़ाई को साधना का रूप लेंगे, आपकी वैराग्य वृत्ति बनी रहेगी। आपको कोई हिला नहीं सकता, कुछ भी हो जाए आपको कोई हिला। वैराग्य कदापि राग में बदलना नहीं चाहिए, वो तपस्या भंग। आपने इतने समय से जो तपस्या की थी वो भंग। हम तपस्वी हैं, तपस्या भंग करने के लिए पैदा नहीं हुए। अपने तपोबल से हर प्रकार की परिस्थिति को जीतने के लिए पढ़ रहे हैं। इसलिए सूक्ष्म चेकिंग एक है, देह का भान। बाबा ने चार प्रकार का वैराग बताया, देह, देह के संबंध, देह के पदार्थ और वैभव, और चौथा देह के संस्कार। बाबा ने कहा तुम्हारे मन, वृत्ति, दृष्टि, कृति और सृष्टि, उसमें ये झलकना चाहिए। देह भान क्या है? हम में से कोई भी अपने आप को शरीर समझ के नहीं बैठता है। कोई भी नहीं कहता कि मैं शरीर हूं। हम सब कहते हैं हम आत्मा हैं। लेकिन ये आत्मा, उसकी कॉन्शियसनेस में क्या बसता है? वो सोचा, ये भान होना कि मैं गुजराती हूं, मराठी हूं, मैं ये हूं, मैं एजुकेटेड हूं, मैं स्किल्ड हूं, मैं टैलेंटेड हूं, मैं ये हूं, वो हूं, चेक करिएगा आपकी कॉन्शियसनेस में क्या बसता है। देह कोई नहीं समझता, लेकिन देह का भान होता है। देह का भान होता है। बाबा ने दादियों को आदि में इस देह भान से मुक्त किया। क्या कह के? मैं मेल हूं, मैं फीमेल हूं। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, तुम विष्णु चतुर्भुज हो, तुम विष्णु चतुर्भुज हो। दादियां अपने अनुभव सुनाते थे, बाबा ये काम तो भाइयों का है ना, ये काम भाइयों का है। बाबा कहता था बच्ची, अपने नारायण के भुजाओं को इमर्ज करो। तब बाबा ने आपने देखा दादियों की ड्रेस भी बदल दी थी, जब जाते थे दादियां स्पोर्ट्स पर वॉकिंग तो शर्ट और वो पहन के जाते थे, स्कर्ट्स भान से बदला। ये कॉन्शियसनेस होना देभान है, आत्म स्थिति नहीं। इससे वैराग्य, तब बाबा ने दादियों के द्वारा, आप जानते हैं दादियों के द्वारा बस का भी काम कराया, ड्राइविंग का भी काम कराया, बिजली लगाने का भी काम कराया। हमारी रतन मुनि दादी, उनका काम था बिजली की तारें लगाना। गुलजार दादी साइकिल रिपेयर्स, गुलजार दादी कहते थे मैं सारी साइकिल खोल के दे दो मैं जोड़ दूंगी। दादी निर्मल शांता गाड़ियों की संभाल, सब कार्य बाबा ने कहा तुमको करना है। ये देभान से न्यारे, ये इसका है, ये उसका है, ये फला का, इस भान से न्यारे। हम चेक करें, हम तो इस देभान से न्यारे नहीं है। क्या हम स्वयं को 100% सर्टिफिकेट देते हैं? जो कहते हैं हम 100% सर्टिफिकेट देभान से वैराग को देते हैं, जरा हाथ तो खड़े करो। मर्चन, मैं मानती हूं मर्चन, घिसाई की जरूरत है। जिसके लिए चाहिए आत्मिक स्थिति का अभ्यास, जब हम आत्मिक स्थिति कहते हैं, क्या मैं हर समय देखती रहूं मैं आत्मा हूं, यह आत्मा ज्योति बिंदु है, एक दूसरे को ऐसे देखना है? नहीं। आत्मिक स्थिति अर्थात साक्षी दृष्टा, आत्मिक स्थिति अर्थात न्यारापन, अनासक्त वृत्ति। आत्मिक स्थिति अर्थात उपराम, आत्मिक स्थिति अर्थात शक्तिशाली, आत्मिक स्थिति अर्थात दिव्य बुद्धिमान समझदार। आत्मिक स्थिति है मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मैं आत्मा ज्योति बिंदु बिंदु मस्तक के बीच हूं, मस्तक मणि नहीं। प्रैक्टिकल क्या है? हम तो घर गृहस्थ में रहने वाले कर्म योगी हैं, हमें अपनी ड्यूटीज करनी है। घर में बैठ करके सिर्फ कमरे में मैं आत्मा हूं आत्मा हूं नहीं करना है। ये आत्मा का ज्ञान, आत्मिक स्थिति प्रैक्टिकल में मेरे को ला दी। इसको कहते हैं देह के भान से न्यारी होना। फिर चलो, देह के संबंध हमारे कर्म बंधनों का कारण है। हिसाब किताब है ना, 84 जन्म लिए हैं तो हिसाब किताब भी तो होगा ना, कर्म बंधनों का कारण है। कर्म बंधन यूं काटे नहीं जाते हैं, आप उन्हें छोड़ दें, मेरे को जी वैराग आ गया है, घर ग्रस्त है, मैं जा रहा हूं या मैं जा रही हूं, अब मैं सेंटर पर जाके रहना शुरू कर दूंगी, अब मैं ये नहीं होता। वो आपका कर्म बंधन किसी न किसी रूप से निकल करके आएगा। देह के संबंधों को, कर्म बंधनों को काटने का तरीका है ज्ञान युक्त दिव्य व्यवहार। आप सब गृहस्थी युगल है, युगलों का भी आपस में प्यार होता है और बाल बच्चों से भी होता है, आगे पोते पोतियों से भी होता है। आपकी रचना देह के संबंधों से वैराग कैसे होगा? वैराग छोड़ने का नाम नहीं है, वैराग तराशने का नाम है। आपने अपनी मनोवृत्ति को परिवर्तित करना है। गुलजार दादी सिखाते थे, जब माताएं कहती थीं, दादी बहुत कर्म बंधन कड़ा है मेरा, पति नहीं मानता, नहीं सुनता, फलाना बच्चा जो है ऐसे करता है, ये दादी गुलजार वृत्ति परिवर्तन सिखाते थे। और वो वृत्ति परिवर्तन क्या है? जब तक आप उसको मेरा समझते हैं तो आप अपने आप को अधिकारी समझते हैं, मेरा इनके ऊपर राइट, मेरा इनके ऊपर कंट्रोल है, ये मेरे हैं। जहां मेरापन आता है वहां मैलापन आता है। भगवान उवाच, ये जो मेरा है इसको बदलना है। देव के संबंधों से कोई संबंध को छोड़ना और तोड़ना नहीं है। आप जबरदस्ती छोड़ोगे तोड़ोगे वो कोई ना कोई रूप से निकल करके आएगा जरूर, लेकिन वृत्ति परिवर्तन करिए। क्या वृत्ति रखो? बच्चों के लिए दादी कहती थी, समझो ये मुझे ठाकुर मिले हुए हैं, ये मेरे बच्चे नहीं, ये मेरे ठाकुर हैं। ठाकुर होते हैं ना, माताएं जानती हैं, ठाकुर मूर्तियां रखते हैं ना आप लोग, ये मेरे ठाकुर हैं जिनकी मैंने संभाल करनी है। जब आप उनको ठाकुर समझेंगी तो आप कितने प्यार से करेंगे, आसक्ति भी नहीं होगी। इस चीज का परिवर्तन हमको मन में लाना है। जो साथी है आपके, साथी के साथ कायदे अनुसार नियम निभाना है, अच्छी तरह निभाना, अपनी ड्यूटी हमें अच्छी तरह करना। आप अपनी ड्यूटी को काटेंगे, तोड़ेंगे, कम करेंगे, वो और बढ़ेगा। कितना अच्छा बाबा ने हमें समझाया कि बच्चे आप ट्रस्टी हो, कमल पुष्प सदृश। ये साथी आपका इस जन्म के लिए है, सदा के लिए तो नहीं है। 84 जन्म तो यही साथी नहीं रहा होगा, ये तो पक्की बात है ना। भले आप बोलो जन्म जन्म के साथी, लेकिन वास्तविकता तो ये है ना, वास्तविकता है ना। तो इस जन्म में मेरा साथी है, एक्टर बन करके अपने पार्ट को प्ले कर, ये पार्ट है जो मुझे प्ले करना है। वृत्ति बदल लो। आपको सच्ची घटना सुनाती, दिल्ली में वो युगल थे, बहुत अच्छे युगल, जिन्होंने शांति स्तंभ बनाया ना, वो शुरू में दिल्ली पांडव भवन से ही बना, बहुत अच्छा युगल। जीते जी जो युगल थी वो भाई को गालियां दे दी थी, ये ऐसा है ऐसा है ऐसा है, हम लोग को सुनाते थे। भाई ने जब शरीर छोड़ा उस समय तो उसने बड़ा अच्छा सामना कर लिया। थोड़े दिन बीते, 13 दिन तो सब लोग इकट्ठे रहते, उसमें जब अकेले होते हैं तब, जब बीते वो दिन, तब वो रोती थी, फोन करती, दीदी मुझे बहुत याद आती है, बहुत याद आती है। क्यों? यह होता है। यह मैं एक मिसाल बता रहा हूं, ऐसे अनेक। क्यों? आपने अगर दादी जानकी हो ना, दादी जानकी इसको कहेगी तेरा मोह था, हमने उसको ऊपरी तौर से तो काटने की कोशिश की लेकिन अपनी मनसा नहीं बदली। हम साथी हैं, हमें प्यार से रहना है, हमें एक दूसरे के सहयोगी बन करके रहना है, हम एक दूसरे पर आधारित ना हो, लेकिन जितना समय हम साथ में हैं साथ तो अच्छा रखें। अरे एक बस में भी आपको कोई यात्री मिल जाता है, ट्रेन में यात्री मिल जाता है, उसके साथ भी आप अच्छा व्यवहार करते हो, ये तो आपका जीवन साथी है। क्यों नहीं प्रेम पूर्वक व्यवहार करो, श्रद्धा भावना से करो, बीच में बाबा को रख करके अपने पार्ट को बेस्ट से बेस्ट प्ले करो ताकि आपको संतोष। जब आपको संतोष होगा कि आपने अपने पार्ट को अच्छी तरह बजाया, जब वो आत्मा प्रस्थान भी करती है तो आपको कठिनाई नहीं। जाना तो सबको है लेकिन आपको संतुष्टता तो रहती, दिल तो भरा रहेगा, मैंने अपना काम किया। अपने दृष्टिकोण को हमने सतयुगी बनाना है या द्वापर और कलयुगी बनाना है, द्वापर कलयुगी है, एक दूसरे की गलती निकालना, एक दूसरे से चींची करना, ये द्वापर कलयुगी। हम सतयुगी बन रहे हैं, ये पाठ मुझे सतयुगी बनाने के निमित्त है। जब आपकी भावना बदलेगी, आपका वैराग्य ऑटोमेटिक नेचुरल सतोगुणी प्रकार का होगा, बिना पुरुषार्थ के होगा। जैसे खेल खेलते हैं, दो टीम होती हैं, जो अच्छी टीम होती है वो भी हार जाती है तो क्या भाई, हमने तो अपना बेस्ट किया, हार गए तो क्या हुआ। ऐसे घर गृहस्थ में रहते अपने सर्व संबंधों के साथ, आपकी सास भी होती है, आपके बाल बच्चे भी होते हैं, संबंधी और भी होते हैं। मैं दाता का बच्चा हूं, दाता की संतान हूं, मुझे संबंधों को शुभ भावना शुभकामना से ही काटना है। आप अनुभव करेंगे धीरे धीरे करते करते, जो आपके अगेंस्ट भी होंगे ना, धीरे धीरे वो बदल जाएंगे। आपने उनके प्रति शुभ भावना रखी। कब तक आप हैं, आप सोना है, आपने अपने सोने की चमक दिखाई, आपने मिट्टी में नहीं मिली। कल मैंने एक बहुत अच्छा सुना, कोई बहुत बुरे लोग होते हैं सबके साथ, कोई ऐसा नहीं बैठा हुआ जिसको ऐसे लोगों का सामना नहीं करना पड़ता, सबके साथ आपको सामना करना पड़ता है। बहुत खराब कटु ऐसे संस्कारों वाले व्यक्ति आपको मिलते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, उनकी एक कोटेशन है, एक कहावत उन्होंने कहा। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ भाई लोग जानते होंगे, माताएं भी जानती होंगी क्योंकि सब एजुकेटेड लगते हैं। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने क्या कहा, यू फाइट विद ए पिग, मैं सार सुनाती हूं, यू फाइट विद ए पिग, पिग विल गेट डर्टी, यू विल ऑल्सो गेट डर्टी, बट द पिग विल एंजॉय। क्यों, उसका काम है गंदगी में रहना, तो वो आपको डर्टी करके एंजॉय करेगा, वो एंजॉय करेगा, आप भी गंदे। ऐसी सर अपनी ऐसी आत्माओं के प्रति भी मुझे शुभ भावना शुभ काम। गलत कह रही हो तो बता दो। इसी चीज की जरूरत है, इसका नाम साधना है। चलते चलते हम कभी शुभ भावनाओं से थक जाते हैं, कहते मैंने बहुत रख ली शुभ भावना। आपने किस भाव से रखी शुभ भावना वो चेक करो, रहम दिल बनो, रहम दिल। वो बेचारा वूंडेड है, उसे बहुत सारे घाव हैं, इसलिए वो रो रहा है, और रोने का रुदन आपके पास आ रहा है, उस पर रहम करो। जान इसलिए मीठे बाबा ने देह के संबंधों को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है। तीसरा है देह के पदार्थ और वैभव। देह के पदार्थ और वैभव मैं समझती हूं इसमें हम सब अच्छे समझदार हैं। बाबा ने क्या सिखाया, दादियों ने क्या सिखाया, आज न केवल देह के पदार्थ और ये हैं परंतु उसके साथ साथ आपका मान सम्मान भी बहुत है, प्रशंसा भी है, स्तुति भी है। मैं याद कर रही थी मोहिनी बहन जो दादी जी के साथ रहती थी, जब मैं नई नई आई थी समर्पित जीवन में, उन्होंने एक बात कही थी, आशा जहां स्तुति होती है वहां निंदा भी अवश्य होती है, याद रखना। जहां आपकी प्रशंसा होगी वह आपकी निंदा भी होगी, इसलिए न प्रशंसा में प्रसन्न होना है न निंदा में उदास होना है। ये हवाएं हैं, आती हैं और जाती हैं। हमें अपने कर्म और धर्म को नहीं भूलना है। मेरा कर्म और धर्म क्या कहता है। मेरे पास बहुत वैभव है, बहुत पदार्थ है, लेटेस्ट समय की डिमांड है, मैं उन चीजों को रखती हूं। मिसाल दे रही हूं, उनसे मेरा वैराग्य हो तो है कोई बात। अगर मैं महलों में रहूं और त्याग करूं तब तो है कोई बात। मेरे पास कुछ है ही नहीं और मैं कहूं जी मेरे को तो बड़ा वैराग है, तो वो वैराग नहीं होता। आप संपन्न हैं, आप भरपूर हैं हर तरीके से, लेकिन आपकी ममता रिंचक मात्र आपके वैभवों में जरा न जाए तो है बात। बाबा ने सिखाया, बच्चे ना तुमको ऊंची साड़ी पहननी है ना तुमको बिल्कुल खराब वाली पहननी है, बीच में। बाबा ने हमको बीच की लाइफ सिखाई, बीच का जीवन, वो हमारा ब्राह्मण जीवन। अगर ऊंची पहनेंगे तो बुद्धि जाएगी, बढ़िया घड़ी रखोगे बढ़िया मोबाइल रखोगे गुम हो जाएगा, बुद्धि जाएगी ना। और बीच करो, चेक करो, एक फॉर्मूला है, मेरे जीवन में ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए जिसके लिए मैं ये कहूं कि मैं इसके बिना चल नहीं सकती, मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए। अपने से पूछो, हमको दादी निर्मल शांता ने, हमारा भाग्य रहा है दादियों की पालना मिलती रही है। दादी निर्मल शांता पांडव भवन में रहते थे, गुलजार दादी रहते थे, ऑलराउंडर दादी रहते थे दिल्ली पांडव भवन, और हम लोग वहीं थे। तो हम लोग कभी कहते थे दादी मैं ये नहीं खाती हूं, हम लोग यंग एज के लौकी कौन खाएगा, पीठा कौन खाएगा, ये चीजें हमने ग्वार की फली कौन खाएगा, ये हम लोग बोलते थे। आज चावल नहीं खाने, हमने मोटे हो जाएंगे। दादी निर्मल शांता एक चीज सिखाती थी। दादी कहते थे सब चीज खानी चाहिए। अगर ऐसा कोई वक्त आता है जो तुम्हें केवल चावल ही मिलेगा, रोटी नहीं मिलेगी, उस समय तुम क्या करोगी? तुम्हारे पेट में दर्द होगा। अपने आप को हर प्रकार से एडजस्ट करने की आदत डालनी है। कभी कभी हम हैंड्स अप करें, भाई मैं नहीं एडजस्ट कर सकती, ये मेरे से नहीं होता। नहीं, दादियों ने कभी नहीं कहा ये मेरे से नहीं होता, मैं नहीं कर सकती। हमें एडजस्ट करना है, हमें एडजस्ट करना है। तो देह के पदार्थों से जब बाबा कहता वैराग, तो पदार्थ नहीं, पदार्थ के पीछे जो आपकी वृत्ति है, आसक्ति है, उसके लिए बाबा कहता है। बाबा कभी कभी चेक करता था, आसक्ति होती है ना। एक बार पिकनिक थी, बाबा के होते हैं बुधवार के दिन, शुक्रवार के दिन या बुधवार, में पूरा याद नहीं, थर्सडे के दिन ब्रह्मा भोजन होता था, फ्राइडे के दिन पिकनिक होती थी। तो शाम को पिकनिक थी, बाबा बैठे थे, यीशु दादी का ऑफिस है ना पांडवन, उसकी जो बाहर वाला है वो हॉल होता था, तो उस हॉल में पिकनिक। बाबा अल्फेंसो आम आए थे बॉम्बे से, तो बाबा ने प्लेट्स दी सबको। बाबा ने कहा अच्छा जिसका आम खट्टा निकले ना वो दूसरा ले लेना। बाबा तो चतुर, अच्छा अल्फेंसो बहुत करके आपो साम खट्टा निकलता ही नहीं है, मीठा ही मीठा होता है, तो उसमें जिसको ज्यादा अच्छा लगता होगा ना आम, उसने कहा। बाबा समझ गया, बाबा ने खिला तो दिया लेकिन समझ गया। ऐसे एक बार जलेबी बनी थी, तो रात को सिक्योरिटी वाले होते हैं ना, तो थाल वही किचन में होता है, तो सिक्योरिटी वालों ने रात को आराम से पिकनिक की, सबने जलेबी खाई दिन में, लेकिन रात को आराम से सारी जलेबी जो है खत्म, थोड़ी सी बची होगी। बाबा ने कहा सवेरे वो जलेबी बची थी ना वो लेके आओ। वहां कहा बाबा वो तो गई पेट में। तो बाबा ने उस पर भी शिक्षा दी।
कलयुग का अंत अब आया है, विकराल विनाश खड़ा आगे, अपने कर्मों के बल पर ही सतयुग में अब तुम्हें आना है। सतयुग में अब तुम्हें आना है।
तो इन सब चीजों में, जिसमें एक बार बाबा ने कहा था मुझे अपनी इच्छाएं कम कर दो, इच्छाएं, बाबा तो कुछ हमारे भाई बहन इतने अच्छे त्यागी वैरागी, अपने पास कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं रखते हैं, और कुछ हैं जिनके पास अथाह है, बीच का चलना, ना बहुत ऊंचा ना नीचा, बीच का, मंजूर है? यहां पर तो आप सब वाइट ड्रेस पहने हो, घर ड्रेस में तो कलर्ड साड़ी चलती है, अब एक साड़ी एक शादी में पहन ली, अब दूसरी में तो वो चलेगी नहीं, ठीक है ना, दूसरी में नहीं चलेगी, अब दूसरी के लिए, अब आपने वो साड़ी 20,000 की बनाई एक शादी के लिए, अब दूसरी शादी के लिए आप दूसरा 20,000 खर्च करो, इतनी बनती है ना साड़ियां आजकल, और खर्च करो। तो आप लोग प्लान करना, क्या करना, कैसे करना, वो आप देखो, भाइयों का तो चल जाता है शायद, लेकिन उनकी भी ड्रेस होती है जो एक बार एक जगह पहन ली अब दूसरी जगह नहीं पहननी है, वैरायटी होती है, लेकिन फिर भी भाइयों का चल जाता है। फिर अपनी इच्छाओं को कम, देखे पदार्थ देखे इच्छाओं को कम कर, क्या हो गया एक बार पहनी तो दोबारा नहीं पहन सकते क्या? एनीवे वो आप लोग देखें। फिर है देह के, जिसको हम कहते हैं संस्कार, सबसे ज्यादा जो तंग करते हैं वैराग्य होने नहीं देते वो हमारे संस्कार, देह के संस्कार। देह के संस्कार क्या है? माताओं में जिद का हो सकता है, भाइयों में रोग का हो सकता है, मैं रचयिता हूं, और भी संस्कार हो सकते हैं, दैहिक संस्कार, कईयों को नाम मान शान, अच्छी अच्छी उनकी प्रशंसा करो, कान में म्यूजिक लगता है, अच्छा है और सुने और सुने, और कईयों को थोड़ा सा ही कुछ गड़बड़ उनके बारे में कह दिया जाए तो डिप्रेशन डिस्टर्ब, ये सब देह के संस्कार। मुझे बैठे बैठे याद आ रहा है दादियां कितना अटेंशन खिंचवाती थी, आज तो हमारी डिग्री कोई कम सुनाए तो कहेंगे इस बहन को पूरा पता ही नहीं है। मैं आपको बात सुना रही हूं 73 की, हम पांडव भवन में रहते थे, हमारे आदरणीय जगदीश भाई ने वर्ल्ड रेन्यूअल निकलता था ना, उसमें मेरे नाम से आर्टिकल डाल दिया जगदीश भाई ने वर्ल्ड रेन्यूअल में, और नीचे लिख दिया आशा बी के आशा गोल्ड मेडलिस्ट बेंगलोर। तो गुलजार दादी ने देखा, गुलजार दादी ने बड़े लहजे से मेरे को कहा आशा तेरा नाम डला है, गोल्ड मेडलिस्ट लिखा है, दादी का ये कहना हम लोग क्यों उत्पन्न करना है? आज दो बहनों की महिमा की जाए, ये पीएचडी है, ये है, ये है, और मेरे लिए सिर्फ कहा जाए बीके आशा ओम शांति रिट्रीट सेंटर की डायरेक्टर है, मेरे को तो वो भी इंसल्ट लगती है। सूक्ष्म बात सुना, मैं अपने से लगा के सुना, क्या मैं केवल ओआरसी की हूं या मैं विश्व की हूं? ओआरसी कितना हद है, विश्व सेवाधारी कितना बेहद है। अपनी सोच, किन्हीं संस्कारों को हम जीत नहीं पाते हैं क्योंकि हमारी उनके साथ अटैचमेंट है। आप चेक कर लो, अगर ये नहीं होगा तो मेरा रोप कैसे पड़ेगा, मेरी कौन सुनेगा आदि आदि। हम अपने आप को लॉजिकली एडवाइस करके, जिसको बाबा कहता है कि बच्चे तुम अपने वकील बन जाते हो, हम अपने वकील बन करके अपने संस्कारों को आथत देते हैं तो वो बैठे रहते हैं क्योंकि मैंने उनके प्रति कटु निगाह रखी ही नहीं है तो वो पनप रहे हैं। और भगवानोवाच, यदि बच्चे आप अपने किसी संस्कार को जीत नहीं पाते हो, याद रखना वही संस्कार आपको अंत में धोखा देगा, धोखा देगा। ये जो वैराग्य है, बेहद का वैराग्य, मम्मा से जब कहते थे मम्मा मेरे पुराने संस्कार मेरे को डिस्टर्ब करते हैं, तो मम्मा कहती थी तुम पुराने संस्कार किसको कहती हो, पिछले जन्म के संस्कार, आसुरी संस्कार? पुराने थे पुराने संस्कार तो तुम्हारे देवी देवता के हैं, वो तुम्हें क्यों नहीं याद आते? पुराने थे पुराने संस्कार तो देवी देवता के हैं ना, ये तो नहीं है ना, ये तुम्हारे आसुरी संस्कार है। जब हम इनकी तरफ कड़ी निगाह रखेंगे, ये आसुरी हैं, तो मैं असुर थोड़ी हूं, मैं तो ब्राह्मण हूं। कल की बाबा की मुरली थी वैष्णव पे, वैष्णव माना वेजिटेरियन, वैष्णव माना शुद्ध, वैष्णव वाले जो होते हैं छुआछूत में बहुत अटेंशन रखते हैं, कोई उनको छू ना ले, टच ना कर ले। अगर मैं किसी से प्रभाव में भी आ जाती हूं तो मैं वैष्णव तो नहीं ठहरी ना। मुझे अपने संस्कार वैष्णव बनाने हैं। पुरानों से जब तक मेरा वैराग नहीं होगा, आप पतंग उड़ाना चाहते हैं, हाथ में आपने डोर रखी है, आप ढीली करते ही नहीं हो, वो पतंग उड़ेगी कैसे? आपको ढीला करना पड़ेगा ना, धागा छोड़ना पड़ेगा ना, डोर छोड़नी पड़ेगी, तब पतंग ऊपर जाए। इसी रीति से जब तक इसको छोड़ा नहीं है, मैं सोचूं मैं बेहद की हो जाऊं, हलचल में अचल रहूं, ये होने वाला अपने उन संस्कारों से वैराग्य वृत्ति लाओ। ऐसे हैं कोई जो कहते हैं मैं हम बिल्कुल मुक्त हैं? है कोई? कोई भी मुक्त नहीं है।